की लंबी लंबी कोपल जैसे नए वृक्ष में होती है ऐसी फूट आई। बोल सतगुरुदेव। जीवा बाज के बोला दत्ता इधर आइए, इधर आना बाग कराना। दत्ता जान गया की बात होगी, जाकर देखते हैं। ओए हो रोयो तो भाई भगवान आ गए। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया और चरणा में पड़कर रोन लागे फूट फूट के। नवे परवरदिगार आप कहां छुप गए थे? हमने तेने सोच लिया था पृथ्वी संत रहित होगी। कबीर साहब ने बोले जीवा दत्ता ये बात फिर मत कह दियो मौत है। जिस दिन पृथ्वी संत रहित रह हो जाएगी इसमें आग लग जाएगी। संत की कृपा से प्रकोपते संत की रजा से ये बैलेंस बना हुआ है। जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं रहेंगे ना इसमें आग लग जाएगी, कट कट कर दुनिया मर जाओगी, क्या जीव नहीं जी सकता, इतना गंदा स्थान है ये। तो दोनों भाई बैठे हो गए। जो बोले महाराज जी आप पहले कोई नहीं आया तो गणे दुखी हो गए। जो बोला रहा आ तो मैं पहले भी जाता, फिर थारा पेटा ना भरो, थारा भरम रह जाता कि और महात्मा तो और रह गए, ये तो बालक सा दिखे सा, मैंने वैसे ही दिखा। ये तो ये धोती कुर्ते में ना इसने लाल कपड़े रंग रखे, ना इसने माला पैर रखी, ना इसने कान पड़वा रखे, कहां का महात्मा होगा। और ईब तुम्हारे को मई में दिखूंगा और ना दिखे अगजिन्यो की बात से। दोनों भाइया नाम ले लिया, उनकी मुक्ति हुई। वो टैणी जो सूखी टैणी चरणामृत से हरी हुई थी आज वो इतना बड़ा वट वृक्ष बना हुआ है कि 5-6 किल्ला में तो आज भी विद्यमान है। हम आख्या देख कर आए। बोल सतगुरुदेव। अब आपको दिखाता हूं मैं, ये तो काल्पनिक चित्र है जो आपको दिखा रहे हैं, और असली फोटो दिखाऊंगा उस बड़ के जो अब हम लेकर आए हैं। इतने फैल गया वो बड़, ऐसे आगे दाढ़ी सी बन जाती है उसका, फिर आगे चल के वृक्ष बन जाता है। अब भी 6 किलो में विद्यमान है, आज भी आंखें देख रहे हूं, और उसको कबीर बट नाम से जाना जाता है। अब वो नर्मदा नदी उसके चारों तरफ से होगी। मंगलेश्वर गांव की तक तो हम गए थे गाड़ी में, अपनी कार में, और उससे आगे फिर नौका से जाना पड़ता है। 3 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट का बस। जो सामने दिखाई देते वहां से एक मंदिर बना हुआ साहिब के नाम का, वहां आश्रम बना हुआ, वहां पर संत रहते हैं, और वहां पर मिलकर बड़ी खुशी हुई हमने जाकर। तो इस प्रकार जब आदमी आंखें देख लेता है इस परमात्मा परपूर्ण परमात्मा की शक्ति को, जब जाकर बेरा पट जैसा है कि भगवान किसे कहते हैं, ये कौन शक्ति थी। ये देखो ये काल्पनिक चित्र है, ये ले आओ इधर कोई भी दिखा दो, 2-3। ये देखिएगा ये सूखी डाली है, वट वृक्ष की सूखी डाली में दोनों भाई ये चरणों का पानी डालिया, साहिब के चरणों का ये चरण धोए, और ये सूखी डाली साथ में है, और इधर डालते इसमें कोपल फूट आई। ले लिया। अब आपको मैं वो दिखाता हूं जो कि हम लेकर आए हैं। ये हम साथ गए थे वहां पर, सैकड़ों फोटो लेकर आए बंदी छोड़ के। ये आप देखिएगा इसमें से छांट लिया मेरे ख्याल से। और ढूंढना पाऊंगी हमारे चित्र उनके साथ में लगे हुए, या वो नारे पाऊंगे कितना। या तो निकाल लिए कोई सा इसमें था। ले लीजिएगा। ये हम साथ गए हैं वहां पर, अरे ये इतना बड़ा बड़ है कि इसकी जड़ एक स्थान पर खड़े, एक एक पेड़ इतना चौड़ा हो रहा है उसका, एक दाढ़ी जहां पर आई थी। ये यहां से लेके ये कम से कम सैकड़ों जड़ें उसकी और बनेगी। ये पूरा चौड़ा दिखाना, इसमें पिक्चर सारी आ जाए। इसके बाद ये लेना योग का इसी स्टेज पर। ये एक ये नारे नारे दिखा रहा हूं आपको, मतलब इतने पेड़ बन गए उनके, एक आपस में यूं भी जुड़े हुए ऊपर ऊपर वो, और वो दाढ़ी बनकर लगी हुई है, आप ऊपर से फिर भी जुड़े हुए इनके नु डाले डाले, आगे जाके फिर बन गए, फिर फैल गया। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये ऐसे ऐसे उस किल्ला में, छह किल्ला में का ऐसे बड़े बड़े वो बड़े हैं। ये और हैं कम से कम भी हम 10-15 लाए नारे नारे, पर इस इन में ये साफ दिखाई नहीं देते। इतना फैला हुआ है इसका, देख ये नारे नारे जहां जहां खड़े खड़े होकर उनके अलग अलग जो बने हुए ना, उस एक ही बड़ से ऊपर से ऐसे मिला हुई डाली आपस में, और आगे से फिर और जड़े फैलकर यूं फैला हुआ इतना। ये प्रमाणित बात है। अब कोई यूं कहे कि वैसे झूठ बोल रहे हैं, तो हमने इस बात का प्रमाण देख लिया कि ईवीस के आगे सच्चाई, मतलब झूठ में गुंजाइश नहीं रही, सच्चाई परिपूर्ण है। ये वहां पर मंदिर बना हुआ साहेब के नाम का, ये हम सारे वहां पर गए हुए थे, ये देखना मुझे, क्योंकि बीच में वो पुराना होकर टूट गया, बीच से आधा किला खाली हो गया, उसमें एक मंदिर एक आश्रम और जीवा तत्वा की, तत्वा भी कहते हैं दत्ता को, उनकी झोपड़ी थी, वहां पर एक मंदिर और बना रखा है उसकी पुरानी याद खातिर है। ये अलग से वैसे महाराज की मतलब याद का प्रतीक है ये मंदिर, और इसमें कोई पूजा पाजा नहीं होती वहां पर। देख दिया भाई, ठीक है, ये रख दो। तो सुनाना जीवा दत्ता की, सुखीदार कर दी हरी भरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मेर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। ये तुमने उड़ा नहीं होता बे, फिर ये सारे देखेंगे, फिर देखेंगे वो रोकिए। जो फिल्म बन रही है ये कैसेट पाया करेगी आपके यहां पे, सीटी केबल पर चला करेगी, ये चलती है, पहले भी चल रही है हमारी कैसेट, उस पर देखा करियो। सुबह मेरे ख्याल में 8:30 से 9 आती है, ये सारी वहां पर जाएंगी सीटी केबल पर यही फिल्में, और आप घर बैठे देखा करियो, आपको पूर्ण जानकारी होगी। इसको सुन सुन कर आपके हृदय में ऐसी नम्रता आएगी और पूर्ण विश्वास होगा। है आई फिर उसे प्रार्थना, जैसा कि आपने सुना था, मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी। ज्ञापन गऊ काट के डाली कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। माँ बेटे की बच्चा गऊ तत्काल जवाई फेरे दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी, सतगुरु हरदम साथी। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। सिकन इंद्रमती पे काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। शेकंद्र की जलन बुझाई वो तो करामाती है सतगुरु अपना साथी, ए सतगुरु हर दम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु हर दम। बिजली खान पठान सुड़ जाया और अब्राहम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। बिजली खान पठान सुड़ जाया और अब्राहम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शेऊ दड़पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई, जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शेऊ दड़पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई, माँ बेटे की चौरासी खोई ये कथा बताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है। मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर दई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है सतगुरु अपना ऐ, सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। जगन राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे वो जानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे वो जानी। दूत भेज के पूछी कहानी जो की त्यों ही पाती है सतगुरु अपना है, सतगुरु हर मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले व बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले व बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु सतगुरु हरदम। साहेब कबीर को काटन चाल्या वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाल्या वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खली। भाग गया ना लाई डील साहेब को हंसी आ जाती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम सा मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम सतगुरु हरदम सा शेख तकीन जुल्म गुजारे ये बावन करी बदमाशी खूनी आथी अग डाले बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकीन जुल्म गुजारे बावन करी बदमाशी खूनी आथी अग डाले बांध जूड़ अविनाशी। आथी डर से भाग जासी दुनिया दे बुलाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम जीवा दत्ता ने झूठा प्रचार किया किसी मूरख ने। कबीर करे भंडारा दो रोटी का साधन ना था यो बेख जुड़िया अतिवार। झूठा परिवार किया किसी मूरख ने। कबीर करे भंडारा दो रोटी का साधन ना था वो बेख जुड़िया अतिवार। बन आया के सौ बन जारा न्यू होता हम आती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी मूरख मनवा जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई मूरख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हर मूरख मनवा काल सत्य पुरुष ने छोड़ाइनी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सत्य पुरुष ने छोड़ाइनी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया न समझ पाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु सतगुरु हरदम साथी नौ योगेश्वर आण फये किन्ना ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा किन्नी यज्ञगुण सरगुण दर नौ योगेश्वर आण फये किन्ना ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा किन्नी निर्गुण सुरगुण दारा बटक बीज जो कया विस्तारा लख चौरासी जाती है सतगुरु अपना मोह हरदम सा मूरख मनवा अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबर दारा मिली नजर से नजर धनी से पाप भसम भया सारा अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबर दारा मिली नजर में नजर धनी से पाप भसम होया सारा गीसा रूप में दर्शा करतारा दिव दृष्टि खुल जाती है सतगुरु अपना सतगुरु हर मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु है सतगुरु हर राम देव गुरु राम देवानंद जिन दया करी प्यारा राम नाम का प्याला सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला गुरु राम देवानंद जिन दया करी प्यारा राम नाम का प्याला सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला चरणों के मां रह राम पाला अब भक्ति मन भाती है सतगुरु अपना ऐ सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना ऐ सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु
अब दोपहर के बाद फिर आपको सुनाएंगे इस शब्द को आगे खोल कर बताएंगे इसमें बहुत गिनी अजब कथाएं हैं उस परमपिता परमात्मा के बारे की आपको ज्ञान होगा कि ऐसी अनमोल शक्ति अभी तक हमें जान नहीं पाए हम इनको इसका कारण क्या था कि इनके बारे में किसी ने खोज नहीं करी और खोज की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर ठोक कर कह दें हिम्मत जब होती है जब खुद अभ्यास हो जाता है उस परमात्मा मेहर करता है और अंतकरण में हमें वो चीज सारी दिखाई देती है फिर वो व्यक्ति उस परम पिता का डंडोरा पीट सकता है जिसके अंदर संशय रहती है कहीं ऐसा ना हो ऐसा नहीं कर सकता वो तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता भगवान राम और कृष्ण को हमने क्यों भगवान स्वीकार किया क्योंकि उनकी महिमा उनकी लीलाएं हमने जरूर से ज्यादा सुन ली इसलिए परमात्मा हमारे हृदय में कति जच गए और महाराज भी कहते हैं भगवान है कोई बड़ी नहीं है कि ना है पर ये तीन लोक के मालिक से हैं और तीन लोक में जन्म मरण नहीं मिटता ये कति निचोड़ से इस शास्त्र का और जब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा तो कितनी साधना कर ले हमारी यह फेल रहेगी आखिर में ये सबसे गंदा लोक है आज हैं कल नहीं रहेंगे हमारा असली स्थान सतलोक है और वहां जाने का नाम सतनाम मंत्र है सतनाम सतनाम ऐसे नहीं है उसका एक मंत्र एक जाप होता है उसके बाद एक सार नाम दिया जाएगा और फिर सार शब्द की उपलब्धि आपको कराई जाएगी ऐसे नहीं होती संत साथ बैठ के आपको बताएगा कि ये शब्द है भाई अंदर बिरना कितने बाजे बाज रहे हैं उनमें वो परमात्मा का असली शब्द है वो आपको दिखाया जाएगा इसलिए इसको सतपुरुष की कमाई बनकर वो प्रकट होगा बोल सतगुरुदेव शाम को 2:30 बजे फिर सत्संग शुरू होगा दोपहर बाद और रात को 8 से 10 भी होगा अब सभी संगत प्रसाद लेकर
प्रसाद बांट दो।
अभी आपने ये शब्द सुना, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा बंदी छोड़ भगवान हमें इतना साथ देता है, ऐसे ऐसे अनमोल उन्होंने कार्य हमारे करके दिए, कुछ नहीं, हमारे सामने ऐसे अनमोल अनोखी लीलाएं की, और उसके उपरांत भी हमें विश्वास नहीं होता इस परम पिता में, तो हमारे अंतःकरण में कमजोरी ज्यादा है। या तो हम काल से भयभीत गणे हैं, और डर तभी निकलता है जब पूर्ण ज्ञान हो जावे, अपने इष्ट पर श्रद्धा जब बनती है जब हमने उसकी महिमाओं का ज्ञान हो जावे। अभी आपने सुना कि इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, और भाई कमाल कमाली जीवित किन्ने सत कबीर दुहाई। ये कथा हमने आपको सुनाई अभी, कमाल और कमाली को कैसे जीत किया। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो कराम आती है, सिकंदर जैसे खूंखार दिल्ली के बादशाह को साहेब कबीर ने अपनी भक्ति शक्ति प्रभाव से और नतमस्तक कर दिया, भक्ति के ऊपर लगा दिया। बिजली खां पठान सुलझाया, अब्राहिम सुल्तानी बिजली खां पठान कैसे सुलझाया। एक समय की बात है कि मगर रियासत में सूखा पड़ गया, अकाल, और बिजली खां पठान वहां का नवाब थे। कोई भी फसल नहीं हुई, पशु भी जो है पानी के अभाव से मरने लग गए, राजा लोग भी जब प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं तो परमात्मा का आश्रय ही तकते हैं। उन्होंने अपने जंतर मंतर जितने भी उनके मुसलमान विधि से किए गए थे वो सारे करवा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हिंदू पद्धति से भी कई महापुरुषों को बुलाया, उन्होंने अपने धर्मपुन जितने भी वो किया करते थे वो सारे करवा दिए, परंतु बारिश ना हुई। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़ी परम शक्ति से युक्त कबीर नाम के एक महापुरुष रहते हैं, और वो गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बुद्धि काम नहीं करी थी कि संत के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्होंने दो बच्चों को, कबीर साहब ने एक लड़की और लड़के को मुर्दा जीवित करके अपना बेटा और बेटी के रूप में उनका पालन पोषण करके भक्ति अधिकारी बनाए थे, और अपने माता पिता जो वृद्ध हो गए थे निरोनिमा, उनका भी वो पालन पोषण समझो, उनका सहारा थे। कबीर साहब ने, गरीबदास ने यही अंधेरा हटाया हमारा कि भाई परमात्मा के पाने के लिए हमने जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, और न ही घर त्यागन की। परमात्मा एक नाम के जाप से आप घर में रहते हुए भी एक सच्ची लौ लाके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। बिजली खां पठान ने अब जब पता चला कि ऐसे महापुरुष, और हमने उनका ज्ञान भी नहीं हुआ, उन्होंने अपना दूत भेज के एक सेवक भेजा मंत्री समेत, وہ جا کر کے کانسی میں بیر سنگھ بگیلا جو کہ کبیر صاحب کے شست تھے اس راجا سے ملے. راجا سے پرارتھنا کری کہ ایسے ایسے ہمارے دیش میں سوکا پڑ گیا ہے اور بجلی کھا پٹھان نواب نے ہمارے سے پرارتھنا آپ سے پرارتھنا کی ہے کہ آپ کے راجیہ میں ایک مہاپرش رہتے ہیں کبیر نام کے, اگر وہ میر کریں ہمارے اوپر تو جیو ہماری جو اترائی اترائی کر رہی پرجا کو شانتی پراپت ہو. اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ وہ مہاپرش کیسے ہیں, آپ کو تو گیان ہوگا. بجلی خان کہنے لگا بھائی بات سنو منتری جی کہ یہ پرماتما ہی سمجھو ان کو, دوسرے شبدوں میں, کیونکہ ہم پرماتما کی پریبھاشا جیسے مسلمان لوگ نراکار سمجھتے ہیں لیکن ایشور آکار میں بھی آ سکتا ہے اور نراکار بھی رہ سکتا ہے, اس کی دونوں شکتیاں ہیں. اور یہ سوئم پرماتما آئے ہیں ست پرش انت کوٹی برہمنڈ کے بھگوان ہیں, پر بھائی ان کی اس ویش بھوسا میں اس نے کون بھگوان مانے ہیں. آدھی دفعہ تو وہ کرتا دھوتی دھوتی باندھا کرتے جب کام کرتے تھے, اور پتلا دبلا شریر, باہر جاتے تھے جب کرتا اور دھوتی اور ساتھ میں ٹوپی پہن لیا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے جی ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں, راجا نے بلایا ہے. بیر سنگھ نے بولا جی بات سنو, ویسے تو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں مہاپرشوں سے بندی چھوڑ سے, پر بھائی سنت نے ایسے نہیں بلایا کرتے, سوئم بجلی خان پٹھان آوے اور ان کو آدر سمیت بات تو بنے گی تب, اور ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. منتری اور وہ دونوں سیوک واپس آ جاتے ہیں. بجلی خان نے پوچھا کہ کیا کارن ہے, مہاپرش کیوں نہیں آئے. انہوں نے وہ بیر سنگھ بگیلا سے ہوئی وارتانیوں کی سنا دی. تو بجلی خان نے پوچھا کہ آپ نے کوئی وہاں ایسے ان کے چمتکار سنے ہوں, کوئی مہیما کے بارے میں جانکاری کی ہو تو مجھے بتاؤ. کہنے لگے جی کانسی کے اندر جس سے بھی ہم پوچھے تھے وہ انہوں کہتا جی سکتی میں کمی نہیں ہے, پورن پرماتما سروپ سمجھو آج کے دن میں. ان کی کئی ایسی مہیما سننے کو ملی, اب آپ دیکھ لو جی, ایسا کہا بیر سنگھ نے کہ سوئم جا کر پرارتھنا کرو تو شاید وہ رضا بخشے. اتنی بھینکر آپتی, چاروں طرف ہاہاکار مچ چکا تھا, بجلی خان پٹھان نے اور کوئی چارہ نہ دکھا تو وہاں چل پڑے. گھوڑوں پر سوار ہو کے 500 سینک لے کے اور صاحب کے پاس پرسم بیر سنگھ کے پاس آئے. بیر سنگھ کو ساتھ لے کر کے وہ بجلی خان پٹھان صاحب کے جھونپڑی پر پہنچا. بیر سنگھ نے ان کی انٹروڈکشن کروائی, پریچے دیا کہ ایسے ایسے مہاراج جی یہ مگر سٹیٹ کے نواب ہیں, آپ سے اپنی آپتی اپنا دکھ بتانا چاہتے ہیں. مہاراج جی ایک ٹوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر دونوں نریش ان کے چرنا میں جا کر ماتھا ٹیک رہے ہیں. کبیر صاحب کہتے ہیں کبیرہ سب جگ نردنا دھنونتا نہ کوئے, اور دھنونتا سو جانی ہے جس پر رام نام دھن ہوئے. اوئے جس پہ رام نام کا دھن ہے اس کا آگے راجا بھی بھکھاری ہوتا ہے. تو کہنے لگا صاحب ایسے ایسے بات ہے, آج کے دن تو میری اسٹیٹ کو پراپتی ہے, اگر سنبھالا نہیں ہوا تو سروناش ہو جاؤ گا. آپ جیسے مہاپرش, مہاراج نے کہا کہ آپ کے نزدیک اور بھی کافی سنت رہتے ہیں, ان سے پرارتھنا کرنی تھی. کہنے لگے بجلی خان کہ مہاراج جی میں نے گاٹ نہیں گالی, میں نے کوئی سنت نہیں چھوڑا آس پاس, سب سے پرارتھنا بھی کی اور انہوں نے جو جنتر منتر جو جوگ یودھی بتائی میں نے وہ ساری کر لی. اب تو آپ دیکھ لو مہاراج جی, جیسے اس کی جان بچانی ہو داس کی آپ کے ہاتھ میں جان ہے. ایسے باو سے، کیوں ویر سنگھ نے اس کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ اتنا نرم بولنا کہ سنت آپ پر پورے آکرشت ہو جائیں اور پھر وہ خوش ہو کر چلنے کی سویکرتی دے تو لے جانا، اگر وہ نوکیں کہ اب سمے نہیں ہم پھر آئیں گے تو دوبارہ نکارا مت کرنا۔ صاحب نے اسی سمے ہاں بھر لی کہ چلو بھائی میں چلتا ہوں، چل پڑے، گھوڑیا کے اوپر بٹھا لیا مہاراج جی کو۔ تو کہتے ہیں اگلے دن وہ دوسرے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں وہاں پر گورکھپور پڑتا ہے، ہم خود دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر، مگر سے 25 کلومیٹر کی دوری پہ گورکھپور ضلع ہے یو پی میں، اور گورکھپور گورکھ ناتھ کی سدھیوں کے کارن پرسدھ ہو کر کے اس کے نام پر گورکھپور پڑا تھا۔ وہاں پر گورکھ ناتھ جی کا بہت بڑا ایک ستھان بنا ہوا ہے۔ گورکھ ناتھ جی نے سوچا کہ تیرے ایک چیتن میں اور دوسرا کوئی سنت آ کر اپنی پربھوتا دکھاوا تو میری عزت کتی نہیں رہے گی۔ گورکھ ناتھ جی نے کیا کیا کہ مگر سے ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پہ اس میں جنگل عام ہوتے تھے، ایک بنی میں جنگل میں آ کے اپنا ڈیرا لا لیا ایک سوکھے تالاب کے اوپر، جو بارش وہاں ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کبیر صاحب نے تو میرا گیان تھا اس بات کا کہ آگے وہ ناتھ جی ضرور ملیں گے، تو کبیر صاحب نے جا کے کہا کہ وہ جب دیکھے نا مہاراج جی سامنے بیٹھے ہیں، اپنے گھوڑے رکوا لیے کہ یہاں روک دو، گھوڑے روک دیے۔ کبیر صاحب گھوڑے سے اتر کے اور ناتھ جی کے پاس چلے جاتی ہیں، نمسکار کرتے تو مہاراج جی بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس میں، تو کہتے ہیں ارے بجلی کھا اکھا مہاراج جی، ارے اتنے مہاپرش آپ کے یہاں پر پہلے ودمان ہیں، ناتھ جی یہ بیٹھے ہیں ان سے پرارتھنا کرو، ان کو یہ نہیں بتایا گورکھ ناتھ ہیں کہ ناتھ جی آئے ہیں، ان سے پرارتھنا کرو یہ جو چاہے سو کر دے۔ تو بجلی خان پٹھان نے پرارتھنا کی مہاراج جی دیا کرو بہت دکھی ہو رہے ہیں۔ کبیر صاحب نے کہا ناتھ جی سنتوں کا کام سکھ دینے کا ہوتا ہے اور یہ آپ کے اکشیتر میں پڑتے ہیں، ان پر میر کر دو، یہ پانی ابھاؤ ہے، اکال پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ گورکھ ناتھ جی اٹھے، اٹھ کے اپنا ٹھا کے تلوار اور ترشول اور سکھ کے اس تالاب کے بیچ میں جا کے ایسے ترشول مار دیا، ایسے نکال لیا، اس میں سے جل کی دھارا نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تالاب پانی سے بھر گیا۔ چھوٹا ہی تالاب تھا، جیسے بہت ہی چھوٹا، گھنا بڑا نہیں تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر آئے ہیں، اب اس کا نشان سے تھوڑا تھوڑا سا، باقی اب وہ تالاب نہیں رہا، لیکن اس کو کہتے ہیں گورکھ تلیا۔ تالاب بڑا ہوتا ہے، تلیا کہیں چھوٹی سی جوڑی نے، ہریانہ میں جوڑی کہتے ہیں، تلیا کہہ دیتے ہیں اس کو، چھوٹی سی بالکل، جیسے کھیتوں میں ہوا کریں، کھیتوں میں ہوتی ہے تھی پہلے، کیوں بھئی پانچ چار گھروں کی ایک لیٹ سی بنا لیا کرتے، اس کو جوڑی کہا کرتے تھے۔ وہ جوڑی یعنی تلیا برگی، اس کو گورکھ تلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آ کے اپنے آسن پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبیر صاحب کہنے لگے دیکھو بھیا تم تو ویسے ہی برم رہے تھے، ناتھ جی نے موج کر دی، پانی پانی کر دیا، کیوں بھائی بہت ہے یہ پانی، یہ جل کافی ہے؟ بجلی کھاں پٹھان کہنے لگا مہاراج جی اس میں تمہارے پشو بھی کونا چھکیں، اس میں تو پشو بھی نہیں پورا پٹ سکتا ہمارا، اور بارش نہ ہوگی تو ہم مارے جائیں گے۔ تو کبیر صاحب بولے گورکھ ناتھ جی یا کرپا اور کر دو، مہر کرو، ایک بارش کروا دو۔ کہنے لگے ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، ای باپ کی موج، اور کوئی سے زیادہ کر سکتا تو کر کے دکھاؤ.
کبیر صاحب نے بولے بھائی میں نے ایسے تو نہیں کہا میں زیادہ کر سکتا ہوں، میں تو آپ سے پرارتھنا ہی کر رہے ہیں.
صاحب نے سوچیں تھے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے بھائی میرے کھیتر میں آ کر، کیونکہ یہ حد کے اپاسک ہیں، حد اپنی حد میں یہ ہر چیز نے نہیں آنے دیتے دوسرے کو.
تو جی کہنے لگا میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ کر کے دکھا دو.
کبیر صاحب اٹھ گئے وہاں سے کہ یوں لڑن نے تیار ہو لیا،
ایک طرف جا بیٹھے، وہاں سے تھوڑی سی دوری پر کو 201 کلا دوری پہ،
اور بجلی خان سے کہہ دیا کہ آپ جاؤ اپنے گھر میں اور صبح میں آؤں گا تمہارے پاس.
کبیر صاحب وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دو سیوک چھوڑ دیا انہوں نے بجلی کھانے کے، مہاتما اکیلے نہیں یہاں بیٹھ جائیں گے، رہ گئے.
کبیر صاحب نے ایسے دھن لگائی، دھن اس کو کبیر دھنی کہتے ہیں، اپنے بیٹھ گئے ایسے آنکھیں بند کر کے. وہ تو ایک لیلا کر رہے تھے، دنیا نے نو نہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں ہی سروس ہوں، ایک ان کی آنکھوں میں دھول ڈالن خاطر کہ دھیان لگاتا ہوں، عرض کرتا ہوں پرماتما سے، سنے گا تو تھری مرضی موج، نہیں سنے گا ان کی مرضی، ایسا کر کے دھن لگائی.
بجلی خان پٹھان اپنے گاؤں میں نہیں پہنچ پائے تھے شہر میں، اتنے میں اتنی زور کی بارش ہوئی کہ پانی پانی کر دیا.
بول بندی چھوڑ مہاراج کی.
اگلے دن سارے کے سارے مگر نواسی اکٹھے ہو کے اور صاحب کے چرنوں میں آئے.
بندی چھوڑ نے ان کو اپدیش دیا، بھیا بات سن لو، دیکھو ہمارے پاس کیا شکتی ہے، ہمارے ہاتھ مارے، پیر مارے، سر مارے، وہی تمہارے، ہم نے رام نام کی کمائی کر رکھی ہے اور تم رام نام کی کمائی نہیں کرتے، تم سارے الٹے کرم زیادہ کرتے ہو، جائیداد جوڑن کی اور جائیداد بڑھانے کی ہوڈ لا رکھی ہے. دو دن کا جیون ہے، بدن بنا جیو کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا.
تو بجلی خان پٹھان کہنے لگے مہاراج جی ہمیں مارگ بتاؤ، ہم بھکتی کریں.
کہنے لگے بجلی خان یہ جو سادھنا تم کرتے ہو نا، روزے اور یہ نماز پڑھنا، یہ بقرعید منانا، یہ ہانی کارک ہے، آپ کو مکتی کا سادھک نہیں ہے. اس میں نام جاپ کرو، ہم ودھی بتائیں گے، آپ کی مکتی ہو جاؤ گی. کہنے لگے جی نام دے دو.
وہ کہتے ہیں دیکھو جی میں تو نہیں کروں گا کسی بھی پرکار کی، لیکن اور کو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ اپنے دھرم کو نہیں چھوڑ سکتے. کتنا سمجھاؤ ان کو، یہ تو ایک لکیر کے فقیر ہو لیے. باقی میں نہ ماس کھاؤں گا، نہ کوئی عید بقرعید مناؤں گا، اور آپ جو بھکتی دو گے مجھے مارگ میں وہی نام جپیا کروں گا. بس بجلی خان پٹھان نے نام لے لیا.
اس کے ساتھ ساتھ ایسے چمتکار نے دیکھ کے وہاں پر ہزاروں لوگوں نے، ویکتوں نے، بہن اور بھائیوں نے بندی چھوڑ کبیر صاحب سے نام لے لیا.
اس پرکار وہ بجلی خان پٹھان کو کبیر صاحب نے اپنے چرنوں میں لایا اور اس کی سدبدھی اس کو دی.
جگن ناتھ کا مندر بچایا جڑدھی نے کری چڑھائی.
جگن ناتھ کا مندر بچایا، یہ بات جانتے سن جوگی ہے،
جلدی نے کری چڑھائی اور صاحب کبیر کے تیز کے آگے پھیکا پڑ گیا بھائی. وپر روپ دھر دئی دوہائی، میری نئی پار بساتی ہے.
جگن ناتھ کے مندر کے بارے میں ہمیں پہلے بھی سنا ہوا تھا جب سے ہم اس مارگ میں نہیں لگے تھے.
کیا سن رکھا تھا کہ مندر کو سمندر نہیں بننے دیتا تھا جب مندر بنانا شروع کیا، اس کا نرمان شروع ہوا. کیوں نہیں بننے دیتا تھا اس کے بارے میں ایسا ہے کہ بھگوان رام نے جب سمندر پہ پل باندھا تھا تو سمندر رستہ نہیں دے رہا تھا. بھگوان رام نے کیا کیا، तीन दिन तक उसकी आराधना करी, हाथ जोड़ के गोड्डे पानी में खड़ा होकर कहता रहा, समुद्र देव मुझे परले पार जान दो, आज मेरे ऊपर घनी आपत्ति आई हुई है, मेरी मदद करो। आज मेरे ऊपर वो आपत्ति है शायद ही किसी जीव पर कभी आवेगी, और मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दे दो। रास्ता नहीं दिया। जब भगवान राम ने अग्नि बाण निकाला, कहने लगा लक्ष्मण वो अग्नि बाण दे मेरा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये भी रावण के संग में अभिमानी हो गया। लेकर तीर अर्जुन समुद्र को फूकना चाहा, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर और भगवान के सामने प्रकट हो गया। कहने लगे परवरदिगार मुझे जलाओ मत, इसमें असंख्यों जीव मरेंगे और मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर कहने लगे अगर भले पुरुष मैंने तीन दिन हो गए तेरा अगर रोते ने और तेने जरा सी भी नहीं सुनी मेरी, जरा रेम नाम की चीज नहीं तेरे अंदर। कहने लगे भगवान एक काम करो, मैं एक विधि बताता हूं, आप ऐसे कीजिए, आपकी सेना में नल नील नाम के दो सैनिक रहते हैं, उनको ये शक्ति है उनको गुरुदेव की दी हुई कि उनके हाथ से चीज समुद्र में डूबती नहीं, वो आपका ये पुल बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कह के समुद्र अंतर ध्यान हो जाता है, नलनील बुलाए, नलनील बुलाए तो उन्होंने पूछा भगवान राम ने, क्यों भाई आपके पास कोई ऐसी है सिद्धि एकांगी है? तो समुद्र चला गया। तो भाई एक बात बताओ भले पुरुषो, मैंने तीन दिन हो गए यहां पर हाथ जोड़े खड़ा इसके आगे, और तुमने नो भी नहीं कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे सिद्धि है, हमारे पास शक्ति है, हम आपका काम कर सकते हैं। नल नील कहने लगे जी बता तो हम देते, पर हमने हनुमान तो डर लग गया था, क्यों क्यों मैं अगर हम कदे आगे ना जाऊं और ये एक डर देता हम दोनों मरा हो, क्योंकि हम ठहरे सैनिक लिए आपके सेनापति, आपके नजदीक आम सैनिक आकर के कह सकता है मालिक? इस बात को वो स्वीकार कर गए, कहा बात बिल्कुल ठीक है, और ना ही हमारी बात का किसी का विश्वास होना था अगर हम कह भी देते तो चलो अब करो इस काम को भाई, आओ बुलाओ थारा, बड़ी अच्छी बात है। कहते नल नील ने अपने सतगुरु को याद नहीं किया, गुरु को इतने मान बढ़ाई में आगे कि राजा ने तुम्हें बुलाया और तुम्हारी तो वाह वाह हो जाएगी, और साहेब को भूल गए। पत्थर उठाया समुद्र में रखा और पानी में गिर गया, नहीं चला, तैरा नहीं। दूसरे ने उठाया नील ने, वो भी नीचे गया, कोशिश कर ली कोई बात नहीं बने, एक दूसरे के मुंह का ना देखेंगे या कौन बनी। उसी समय उनको याद आता कि हमने आज भगवान अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। दोनों खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं परवरदिगार इज्जत रखो हमारी। उसी समय साहेब कबीर वहां प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहेब मुनिंदर नाम से त्रेता युग में आए थे, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और वहां पर आकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं नलनील क्या बात होगी भाई, कि महाराज जी हमारे से गलती होगी, हमने आपको याद नहीं किया, हमारी वो शक्ति गई। कहने लगा भैया ये तो मोती कैसी आब होती है, भक्ति ऐसे ही खत्म हो जाती है, गुरु मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए, और अब तुम्हारे पास यह शक्ति नहीं रहेगी। उस समय कबीर साहब कहने लगे ऐसे करो, ये समुद्र ये दूसरा जो पर्वत है साथ में, इसको मैंने अपनी शक्ति से हल्का कर दिया, वो पत्थर लाओ उठा के। इतना ही कहा था कि सारे बंदर सारी सेना समेत हनुमान जी के और वो पत्थर उठाने के लिए चल पड़ते हैं। पत्थर उठाकर लाए, ऐसे पत्थर रखें जो कहते हो ऊपर डट जावे। उसमें हनुमान जी ने राम राम लिखना शुरू कर दिया, पत्थर पाड़े वहां से उखाड़े राम लिख दे, क्योंकि उसने अपने दिनचर्या रोजाना की राम नाम जपना था, उसने अपना कार्य भी करना था और भजन में भी भंग नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसने यह तरीका ढूंढा, पत्थर पाड़े राम और उठा के दे दे, पत्थर उठा उखाड़े राम दे दे, और पाड़ रहे उन पर भी अपना राम उठा कर दे दे, क्योंकि उसकी ड्यूटी उठा उठा के देने की थी। इस प्रकार वो पत्थर उस पुल के ऊपर तिरे और समुद्र पर पुल बांधकर भगवान राम सेना समेत लंका में चले गए। अब जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने एक राजा था इंद्रदमन, उड़ीसा का राजा दमन, इंद्रदमन नाम का एक राजा था, वो भगवान विष्णु का तगड़ा उपासक था। भाई सपने में दर्शन दिए, कहने लगे राजा मेरा एक मंदिर बनवाओ और जगन्नाथ नाम रखना उसका, जगन्नाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध होगा और बहुत से भगतजन वहां जाकर अपना भजन कीर्तन किया करेंगे। राजा ने सवेरे सवेरे सारी अपने सेनापतियों को बुलाया, साथ में खजांची को बुलाया कि कल ही मंदिर का निर्माण शुरू करवा दो, मिस्त्री बुलाओ। कारीगर बुलाए गए, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। महीने दो महीने में वो मंदिर बिल्कुल तैयार करके और अपना सुचारू रूप पर कर दिया। इतने में कहते हैं वो समुन्द्र इतना जोर से उठ कर आया कि उस मंदिर को, जगन्नाथ के मंदिर को कति साफ कर दिया, मतलब नीम तक भी खो दी उसकी। जब वो समुद्र शांत हो लिया दो चार महीने के बाद उसने फिर निर्माण कार्य शुरू किया। जब भी मंदिर तैयार हो जावे समुद्र उसको जड़ से उखाड़ देवे। इस प्रकार चार पांच बार राजा ने कोशिश की और समुद्र ने चारों पांचों बार उसको खत्म कर दिया। आखिर में राजा ने सोच लिया कि यहां पर मंदिर बनाना कति कठिन काम है, अपने थककर बैठ जाता है। उधर से कबीर साहब को याद आई अपनी वही निरंजन से किया हुआ वायदा। जब कबीर साहब निरंजन के पास आए थे तो उन्होंने कहा था, एक वचनबद्ध होकर आए थे बंदी छोड़ को, कि महाराज जी आप जगन्नाथ के मंदिर को बनवाना। कबीर साहब ने राजा इंद्रदमन को जाके कहा कि हे राजन, ये मंदिर मैं बनवा सकता हूं अगर आप बनवाना चाहते हो तो। राजा कहने लगे भैया, क्योंकि महाराज जी तो ऐसे अपने साधे देश में रहते थे, कहने लगे भैया आपके बस का ना है वो, मैंने तो इतना जतन से तीन चार पांच छह बार इसको बनवा लिया, समुद्र बनने नहीं देता, वहां पर वो स्थान ठीक नहीं है। कबीर साहब कहने लगे भाई बात सुन ले, अगर आपने ये मंदिर बनवाना हो मैं बनवा सकता हूं, समंदर कुछ नहीं कहेगा आपको, ना इस मंदिर को कुछ कहेगा, पर यदि आपने बनवाना हो तो मैं वहां मिलूंगा, वो स्थान बता दिया आपने। लेकिन राजा ने पूरा ऐसा भय बैठ गया था कि ये मंदिर बने नहीं सकता। सपने में भगवान कृष्ण ने फिर उनको दर्शन दिए कि राजा जो आज ये महापुरुष तेरे पास आया था, इसकी शक्ति का पैमाना नहीं बढ़ा है, ये मेजरमेंटेबल नहीं है, इतनी प्रबल शक्ति का हंस है ये, पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है, और जाके इसके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले और ये मंदिर बनवा देगा। भाई अब जब सवेरे वो उठा तो उसने देखा क्या तो भगवान ने दर्शन दिए और इस महापुरुष के बारे में यह जानकारी दी, तो राजा ने वो स्थान जहां पर कबीर साहब ने बताया था वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए तो चरणों में मत्था टेका, कहने लगे महाराज जी मैंने आपको पहचाना कोई ना, मैं तो नीच आत्मा हूं, अक्षमा करियो। कबीर साहब ने बोले भाई ये बिना ज्ञान के ही सारा जो है ढमढमा बिगड़ा पड़ा है, तुम आत्मा किसने मानो हो जिसने लाल तक कपड़े कर रखे हो और
ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कान पड़वा रखियो, या कति मूंड मंडवा रख्या हो और तिलक कई ला रखियो, भाई चलो ठीक है, जो भक्ति करते हैं उस वेशभूषा में भी परमात्मा अगर सत नाम का जाप करते हैं, सच्चे नाम का, और अपने राग द्वेष रहित रहते हैं तो परमात्मा पाया जा सके। लेकिन वो साधन, वो जो वेशभूषा परमात्मा के पाने में सहयोगी नहीं है। कानों के पड़वाने से और जटा के रखवाने से या मूंड मंडवाने से या नी वस्त्र घूमण तें राख लपेटण तें दूना पर गात फूकण ते परमात्मा मिले तो इस आसान प्राप्ति का कुछ भी कोने। पर भैया अंधेरा इतना हो लिया, अटाए तो बिना अटता। जो बोला जी मैं शुरू करवा दू, अब इससे करवा दे भाई। जो बोला जी मूर्त करवा लू, अब बिना मूर्त के चालन देव कह, मूर्त तो तू पहला करवाया ना करता। कबीर साहब कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी अरशोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बण बण राम फिरे। यानी भगवान वशिष्ठ जैसे कोई भी आगे और पीछे की ग्रह नक्षत्रों को देखने वाला नहीं है, इसके बराबर है। उन्होंने रामचंद्र का ब्याह जब सीता से करवाया, धनुष तोड़ने के बाद फेरे करवाए, दो तीन दिन लेट करवाए थे कि ये घड़ी शोभ नहीं है, और उस नक्षत्र सारे शोध के और बच्चे सदा सुखी रहेंगे आशीर्वाद दिया था। कहते सीता हरण मरण दशरथ का फिर बण बण राम फिर है, वो मूर्त ने के डाल डाय जी उसके, तो बिना मूर्त दर्जे रीट चल ले बंदी छोड़ का नाम। वो मंदिर जब कति तैयार हो गया और कबीर साहब ने कहते हैं अपना एक चबूतरा बनवा लिया उस समुद्र की तरफ, जिधर से समुद्र वहां आ रहा था, उस चबूतरे पर बैठ गए बंदी छोड़ के। बोले उधर से समुद्र पूरे वेग के साथ इतना ऊंचा उठ जाता है, सैकड़ों फुट की ऊंचाई पे, और ज्यों ही आगे को बढ़ने लगा कबीर साहब ने ऐसे अपना हाथ कर दिया, वो समुद्र जितना ऊंचा उठा हुआ था न्यों का न्यों पानी जैसे पर्वत की तरियां खड़ा हो गया, आगे नहीं सर क्या। जब समुद्र की नहीं कोई चारा चला, हाथ जोड़ के कबीर साहब के आगे विपर रूप बनाकर आ गया, ब्राह्मण का रूप बनाकर। न्यों बोले स्वामी जी मुझे आगे जाने दो। आगे कहां जाएगा कि मंदिर ने डाऊंगा। कबीर साहब बोले रे भले पुरुष, मंदिर ने डाया करें बनाया करें, या तेरे ते किसने सिखा दी कि मंदिर डाऊंगा? नहीं मंदिर नहीं डाया करते। अग्ना जी मैं डाऊंगा। क्यों डाओगा भाई? कि जब ये रामचंद्र रूप में विष्णु आया था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके अर्रा पूछा था, अब मैं इसका मंदिरियां बनन नहीं दूं। कबीर साहब ने बोले भाई जिद नहीं लाया करते, कोई बात हुई या? जब विष्णु कहे तो उसको परमात्मा तीन लोक का, और उसके लिए सिर फड़वावे, कोई बात हुई? अग्ना जी कति नहीं बनन दूं। ले इतना दिमाग हमारे अंदर नहीं। बोला भाई तू आगे नहीं जा सकता, अरे हिम्मत तो जा फिर, तोड़ दे मंदिर में। अग जी मेरी नहीं पार बसाती, तभी तो आपके साथ आगे विनय कर रहा हूं। अग नहीं ये नहीं हो सकता, वापस हो जाए यहां से। ने बोला जी फिर मुझे बदला दुआओ इसका, मैं क्या करूं, वैसे तो मैं नहीं मानू। कबीर साहब कहने लगे उसकी द्वारका ने डबोले, कृष्ण की द्वारका को डबोले। कबीर साहब कहते हैं क्योंकि द्वारका उसमें खाली थी, कोई नहीं था उसमें, क्योंकि 56 करोड़ यादव थे वह दुर्वासा के शराब से जड़ आपस में कटकर मर गए थे, और द्वारका कति खाली पड़ी थी, उज्जड़ हो गई थी। उसमें समुन्द्र ने वह द्वारका पानी में डुबोली और जगन्नाथ के मंदिर से दूर हो गया। अब क्या होता है कि उसकी पूजा शुरू होती है मंदिर की, पांडे लोग आ जाते हैं अपने अपने नहा धोकर खूब स्वच्छ वस्त्र पहन के और पूजा के लिए जाते हैं, तो आगे कबीर साहब नजर आ जाते हैं। वो मुख्य पांडा जो था हेड पांडा, उसको कबीर साहब को गालियां देता है, कहता रे मनहूस तो सुबह सुबह कहां दर्शन दे गया मुझे, छोटी जाति। और उसको पकड़ के हाथ से धक्का दे दिया, साहब दूर चले गए।
हाथ धोया खूब कई बार पानी से सब मसल के रेते तक को 21 बार के असूत के हाथ लगा दिया। मंदिर में पहुंचा तो जितनी भी मूर्तियां जगन्नाथ, हाँ इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, जगन्नाथ की जितनी भी मूर्तियां थी वो सारी की सारी कबीर साहब का रूप धारण करे बैठी हैं। अब उन पांडवों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये तो भाई कमाल हो गया, सारी मूर्तियों का प्रारूप बदल गया और सारी ही, वो जो सामने मैंने देखा था एक छोटा सा नीच व्यक्ति छोटी जाति का, उसी का रूप बन गया। वो सारे बैठकर अपना एक तरफ बैठ जाते हैं, ये कौन कहानी बनी। इतनी देर में वो फिर जगन्नाथ की मूर्ति बन जाती है। पूजा होगी सारी, फिर उन्होंने धोई वो सारी मूर्तियों को 20-20 बार 21-21 बार मांजा, उनका धुआं पूरा जब जा करके कि अछूत का रूप हो गया था। पूजा शुरू होगी, पूजा पूर्ण होगी, उस पांडे का कोड लाग गया जिसने बंदी छोड़ के साथ बदतमीजी करी थी, दुर्व्यवहार किया था, उस पांडे का रो कोड लग गया। और कोड ऐसा होता है कि अंग कटने शुरू हो जाते हैं, उनमें चीस मारती है, माखी भिड़ बनाती है। एक हफ्ते के बाद सारे शरीर पर पीप चल पड़ी, सारे अपने वैदगाई कर ली, अपने जंतर मंत्र कर लिए, भगवान विष्णु रट लिया, शिवजी रट लिया, सारे कर लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। सपने में भगवान कृष्ण ने फिर दर्शन दिए कि पांडे उस परमात्मा के चरण धोकर पी ले, उस महापुरुष के, जब भाई तुम्हारा रोग कोड ठीक होगा, मेरे बस का कोने। अब मरता के ना करता, ये छुआ छाते इतने है जिन्हें काम चल रहा है, हिंदू बीमार हो जाए कोई ना कह दे मुसलमान दाड़ा लावे उड़े लुआ लावेंगे, और मुसलमान का तकलीफ हो जाए कोई कह दे हिंदू ऐसे ऐसे आपको आशीर्वाद देते ठीक हो, वहीं आ जाएगा और ठीक हो पाछा दोनों नहरे नहरे, क्यों इतना काम चल रहा है। तो परमात्मा के घर में कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारी एक जात है, मानव जाति हमारी, और सद्भावना भावना पूर्वक रहते हैं तो मनुष्य नहीं तो पशु से भी बदतर जीवन है हमारा। तो जी वो पांडा फिर जाता है कबीर साहब के चरण धोके और उन्हीं के सामने पीन लग जाता है। हाँ जाके कहता महाराज जी कृपा करो पापी पे, दया करो पापी पे, मेरे से गलती होगी। कहने लगा भाई मन ने क्या कह दिया, अग महाराज जी मेरे से गलती होगी, मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया। कोई बात ना भाई, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। अग जी मेरे देखियो क्या हाल हो गया, सारा जोना कोड लगा हुआ है, अक्षमा करो महाराज जी, ये महाराज जी आपके चरण दूंगा। क्या करेगा भाई चरणों का, ना महाराज जी चरण दूंगा, रम नीच जाति का हूं, आंखों में पानी आ गया महाराज जी, नो ना कहो, मेरे से तो गलती हो गई थी, अज्ञानी जीव सुम के जानू आपकी शक्ति ने। पैर धोए, कुछ जल वहीं पर पी लिया और कुछ जल को 21 दिन तक नहाने के पानी में चरणामृत को डाल डालकर वो स्नान किया, वो कति स्वस्थ हो गया, कोई कोड नहीं रहा। बोल सतगुरु देव। कबीर साहब कहने लगे पांडे एक बात सुन लो, इस मंदिर में अगर किसी ने छुआछात की है आने वाले समय में भी उसकी याद रुकति हो जाएगी। उसके बाद जगन्नाथ का एकमात्र मंदिर है हिंदुस्तान का जिसमें कभी से किसी भी जाति वाले को जाने से मना नहीं किया जाता।